कलयुग में भगवान नाम कीर्तन, गीता का श्लोक का उच्चारण और साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। मेरे को आज बताया साधकों ने जो भीलवाड़ा से आए, वो बोल रहे थे कि भीलवाड़ा के लोग इतने गदगद हो गए कि जब सत्संग सुनते हैं और ऐसे संत मिलते हैं तो नया जनरेशन और पुराने लोग सब बोल रहे थे नहीं तो हम तो भाई ये पान पराग शराब कबाब तू तू मैमे में खप रहे थे। जब कोई संत आते तो पता चलता है भक्ति का क्या कीमत है, मनुष्य जन्म का क्या कीमत है, हमारा समय सार्थक होता है। शास्त्रों में लिखा है ते सौभाग्या मनुष्य शु, मनुष्य लोक में भी सौभाग्यशाली। ते सौभाग्या मनुष्य शु कृतार्था नृप निश्चया सुमरन्ति सुमारियन्ति हरे नामय कलि युगे। वे सचमुच में सौभाग्यशाली हैं जो सुमरण करते हैं करवाते हैं हरि नाम का कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा जपत नर उतरे सिंधु पारा। कलयुग में भगवान नाम का बड़ा भारी महिमा है। तो भगवान नाम जपने वाले भी चार प्रकार के लोग होते हैं। एक होते फोर्थ क्लास, राम 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 नाम जपना पराया माल अपना बड़े भगत होके आएंगे और फिर देखो तो कोई हिसाब किताब नहीं। सो दूसरे होते थर्ड क्लास, तीसरे होते सेकंड क्लास और चौथे होते फर्स्ट क्लास। तो तीसरे नंबर के जो सज्जन है उनको किसी गुरु से मंत्र मिल गया, ले बेटा 10 मालाएं जपना, उसने 10 मालाएं जपी, 10 मालाएं पूरी हुई, हाश जय गुरु महाराज नियम पूरा हुआ, बस वो जो उतारी हो गए नियम पूरा हो। अच्छा है फोर्थ क्लास से तो अच्छा है कि धर्मादा का खाता तो नहीं, धर्मादा का अपने घर में ले जाने से 7 पीढ़ियां कंगाल हो जाती, उस समय पता नहीं चलता खाते समय, बाद में तो बढ़िया जाम हो जाता छक्का जाम। तो जप करने वाले एक होते हैं कि भाई चलो कर लिया दिखावा फोर्थ क्लास, दूसरे होते हैं कि जप किया हाश हो जाता है, तीसरे होते हैं 2 नंबर के जप किया 10 मालाएं लेकिन चलो 2 और वधारे कर अच्छो लागे चलता फिरता भगवान का जप किया अच्छा लागे। और चौथे होते हैं सिद्ध जापक, जिन्होंने जप करते करते जप के अर्थ में सिद्धि पा लिया, उसको बोलते महापुरुष। ऐसा जो पहले नंबर के जापक है, ऐसा एक पुरुष अगर मिल जाए और दूसरे लाख आदमी हो और वो एक पुरुष के साथ बैठ के कीर्तन करे तो नास्तिक हो नास्तिक का बाप हो उनका भी कल्याण हो जाएगा ऐसा जापक। इसको बोलते उत्तम जापक, मध्यम जापक, कनिष्ठ जापक और कनिष्ठतर जापक। पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। तो कलयुग में बड़े में बड़ा ये फायदा है कि कोई उत्तम जापक महापुरुष मिल जाए और उसके साथ बैठ के कलयुग का केवल हरि गुण गाहा, गाहत नर उतरे भव था। कलयुग में हरि के गुणगान सुनने और गाने से भव सागर से आदमी पार हो जाता है। भगवान के मंदिर में जाना अच्छा है, जाना चाहिए, लेकिन हृदय के मंदिर में ले जाने वाला सदगुरु जब तक नहीं मिला तब तक मंदिर में चक्कर काटते काटते जिंदगी पूरी हो जाती। कबीर जी ने कहा तीर्थ नाए एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाने से एक फल होता है धर्म का, अगर संत मिल जाते तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार फल मिलते। अगर उस संत कोई सत्य को उत्तम जापक पद को पाए हुए साक्षात्कार किए हुए और उनको हम लोगों ने गुरुदेव के रूप में मान लिया, उनके साथ हमने संबंध जोड़ लिया, तीर्थ नाए एक फल संत मिले फल चार सदगुरु मिले अनंत फल। अनंत फल माना जिस फल का अंत न हो, न अंत इति अनंत। सतगुरु मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। काशी में रामानंद नाम के उत्तम जापक थे, सतगुरु थे, सत्य में उनकी विश्रांति थी, सत्य एक आत्मा है। उनसे दीक्षा लेकर उनका एक साधु चेला भजन करता था। तो वो रामानंद का चेला जो था उसका नाम राजू तो नहीं था, अभरानंद नाम था जो था। वो भजन करते करते उसने खेचरी मुद्रा किया और खेचरी मुद्रा लग गई वो अलग बात है, करना अलग बात है। किया खेचरी मुद्रा कर गया और उसका प्राण रुक गया, न प्राण अंदर जाए न बाहर आवे, आंखें फटी रह गई। पलकों पड़े कोई नहीं, ये क्या हो गया? गुरुजी का स्मरण किया मध्य रात्रि को। गुरु महाराज को पता चला कि मेरा चेला संकट की अवस्था में। रामानंद स्वामी उस समय यह हवाई जहाज रात को 2 बजे कहां से लाना, और चेले के गुफा में जाने तो हवाई जहाज थोड़े घुसेगा, वो तो उत्तम जापक योग बल से जाएगा कि गुरु। तो गुरु अपना योग बल से शिष्य को गए बताया कि बेटा ये हट करके खेचरी मुद्रा नहीं किया जाता है, तुम गुरु में प्रीति करके गुरु को जो अनुभव है अपना अनुभव बना लो, ये आसान तरीका है। छोरा अपनी मेहनत मजूरी करके चपरासी मजूरी करके राजा हो उसमें कठिनाई है, लेकिन पिता की राजा की उंगली पकड़े राजा को रिझा दे तो राजा राजतिलक कर देगा। ऐसे ही गुरु गुरु का कॉन्टेक्ट रखे तो अपना गुरु भक्ति के बल से निष्कंटक योग को पाले। उपदेश देकर रामानंद स्वामी आकाश मार्ग से आ रहे थे तो आश्रम के नजदीक पहुंचे, इतने में देखा कि आकाश मार्ग में एक दैदीप्यमान आभा मंडल है, एक तेजस्वी कुछ दिख रहा है। नजीक आए तो देखा कि इंद्र देवता अपने देवगणों के साथ धरती से वापस लौट के जा रहे हैं स्वर्ग को। इंद्रदेव ने देखा रामानंद स्वामी, देवताओं ने रामानंद स्वामी को और इंद्र ने भी रामानंद स्वामी को प्रणाम किया, क्योंकि रामानंद स्वामी उत्तम जापक थे। देवता तो पुण्य का फल भोगते हैं स्वर्ग में, अपनी कमाई खर्च करते हैं, और संत तो अपनी कमाई भी करते हैं और दूसरों की कमाई करवा के भगवान तक पहुंचाते हैं। 3 प्रकार के देवता होते हैं। एक होते आजानु देव, जब से सृष्टि हुई तभी से देवता बने और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो देवलोक में रहेंगे। दूसरे होते कर्मज देवता, यज्ञ याग व्रत उपवास करके दान पुण्य करके मरने के बाद देवलोक में गए, स्वर्ग में गए अच्छे काम करने के प्रभाव से, उनको बोलते कर्मज देवता। तीसरे होते हैं धरती के देवता, अपने तन से अपने मन से अपने धन से आप तो भजन करते, दूसरों को भजन कराने की वस्तु बनाते, आश्रम बनाए मंदिर बनाए सेवा करते, दान का पैसा लोहे का चना समझते, भूल में 5 रुपया अपना लग जाए तो लग जाए लेकिन धर्मादा का 5 रुपया अपने गजबे में नहीं आए। ऐसे जो लोग हैं वो धरती पर के देवता है जयराम जी की, उनको बोलते हैं धरती के देवता। स्वर्ग का देवता तो पुण्य खत्म करके अपना मजा ले रहा है, लेकिन धरती का देवता तो पाप खत्म करके अपने को परमात्मा और गुरु का प्यारा बना रहा है। तो रामानंद स्वामी ऐसे थे, तो रामानंद स्वामी को देवताओं ने प्रणाम किया। रामानंद स्वामी ने कहा कि देवलोक अपना इस भूमंडल पे कैसे आए काशी में। इंद्र ने कहा कि धरती पर पाप बढ़ गया, स्वार्थ बढ़ गया, कूड़ कपट धोखा बढ़ गया, लोग बड़े दुखी। दुख भगवान ने नहीं बनाया, दुख कुदरत ने नहीं बनाया, दुख बनाया लोगों के कर्मों ने। इसलिए जब तक लोगों को भक्ति नहीं मिलेगी तब तक उनके कर्म नहीं कटेंगे। और भक्ति कराने वाला कोई महापुरुष का आत्मा अवतार लेना चाहता है, लेकिन कोई अच्छा घर नहीं दिखाई दे रहा है। पहलाज का आत्मा अवतार लेना चाहता है, पहलाज को हम भेजना चाहते हैं, लेकिन ये रामानंद स्वामी हम बड़े दुखी हुए कि पहलाज को अवतार लेने की कोई जगह नहीं मिल रही। आज जिसको जोशी मठ बोलते उसको उस जमाने में ज्योतिर्मठ बोलते थे। ज्योतिर्मठ में जो साधु थे वहां के महंत स्वामी अघोरानंद, वो बड़े तपस्वी थे, बड़ा सोहम की उपासना करते थे। श्वास भीतर जाए सोम बाहर आए हो, अपने श्वासोश्वास को प्रभात में पद्मासन में बैठ के श्वासोश्वास को देखें। कभी मन में उथल पाथल है तो फिर श्वासोश्वास में मन ले आवे। ऐसे सतर्क वे महापुरुष थे कि उनका आधा घंटा भी फालतू नहीं जाता था। वो सोहम की साधना को इतना परिपक्व कर चुके थे कि बस साक्षात्कार के निकट पहुंच गए थे। अब ब्रह्मचर्य व्रत कम बोलते थे, संयम से भोजन लेते थे, और रबड़ी खा के अथवा अपना भंडारे खा के खड़िया पलटन नहीं होते थे। आजकल तो चलो उस बाबा जी बन गए, खा ले रबड़ी खा ले भंडारा, तो भंडारा ही भंडारा हो जाता थे। जैसा अन्न ऐसा मन, सात्विक अन्न होगा तो सात्विक मन रहेगा, भजन में मन लगेगा, भंडारे का अन्न खाएगा तो भजन क्या करेगा, पेट पे हाथ घुमाते चौबे जैसा बना रहेगा और क्या करेगा। तो बड़े संयम से खाते पीते थे और साधना भी बड़ी तगड़ी थी। अप्सरा चित्रांगना ने देखा कि ऐसी पुरुष के ओजस से पहलाज को अवतार अच्छा मिलेगा। रात को प्रभात को 2:30 बजे जब समय हुआ होगा, तो चित्रांगना ने अपनी अप्सरा विद्या से ज्योतिर्मठ के तेजस्वी साधक को सपने में अपना रूप दिखाया, सपना दिया, सपना देके उनकी नींद तोड़ दिया। नींद तोड़कर वो सामने खड़ी हो गई। वो अप्सरा का ऐसा रूप, ऐसा लावण्य, ऐसे नखरे और ऐसा कुछ कि वो महापुरुष अपने को संभाल नहीं पाए और वे पति पत्नी के व्यवहार में उतरे और वो अप्सरा उनके साथ रही, गोपकन्या का रूप लेकर। समय पाकर उनको बालक हुआ और बालक बड़ा तेजस्वी, बड़ा दीप्यमान, बड़ा तेजस्वी बालक। अप्सरा ने बालक को जन्म दिया, बालक गोद में रखकर बोलते अब मैं जा रही हूं, मोरो काम पूरा हो गयो। अरे ठगनी, है तो मेरा भजन ठग लिया तूने। अघोरानंद ने होश संभाला कि मेरे से बड़ा धोखा हो गया, ये माया का धोखा है। कहां तो मैं सोहम की साधना करके आत्मा ब्रह्म है, व्यापक आनंद स्वरूप ईश्वर, और मेरा आत्मा एक हो गया था। कहां तो सारे संसार को ढांपा हुआ चिदानंद स्वरूप अपना, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित होते हैं, उस चैतन्य का मैं अनुभव कर रहा था। जो ब्रह्मा का अनुभव, जो विष्णु का अनुभव, जो शिव जी का अनुभव, वो मेरा अनुभव हो रहा था। मैं तो भगवान के अनुभव की बराबरी करने की ऊंचाई पर आकर फिर इस कीचड़ में गिर गया रे, ये क्या। जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट का एकाएक किसी गलती से राज्य छूट जाए और फिर शराब बराब पी ले और फिर कहीं नाली में गिरे और नशा उतर जाए तो सावधान हो जाएगा क्या। वो सावधान हो गए, लड़के को लेकर काशी आए। ये लड़के को किसी के अर्पण कर दूं और मैं अब काशी में सदा के लिए शरीर छोड़ दूं, ये मेरा इतना भजनानंदी शरीर, उससे इतना ये गलती हो गया, अब ये शरीर को रख के काय करूंगा। ऐसे सोचते सोचते वो पहुंच गए स्वामी रामानंद के आश्रम में। और रामानंद सब बात जानते थे। रामानंद ने किया कि अघोरानंद जी महाराज, तुम्हारा जीवन बहुत ओजस्वी तेजस्वी पवित्र, लेकिन ये तुम्हारी पवित्रता तुम्हारा ओज और तेज तुम्हारा अपना नहीं है, ईश्वर का दिया है। अब जो आदमी हार जाता है उसको क्या है कि तू हार गया अच्छा नहीं किया तो और दुखी होएगा क्या? उसको तो टाडस बंधा नहीं है क्या? भाई चलो चलो गिर गया तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, रुपया गिर गया तो कोई बात नहीं, अभी तो तेरे हाथ में इतना है। इतने मो चित्रांगना आ गई, चित्रांगना आ गई, उसको देखा। बस रामानंद स्वामी ने क्या करा, जोर से अपनी कृपा शंख के द्वारा, शंखनाद वैसे ही पवित्र माना जाता है, तो संत का संकल्प और संत के मुख से शंख स्थापित हुआ, फूंका गया। एक सेकंड में 700 घन फीट स्पीड से शंख फूंका जाए तो 2200 घन फीट रेंज के हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, ये विज्ञान बोलता है। लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट होते दूसरे आसुरी तत्व कितने विदा हो जाते, अभी विज्ञान को समझ में नहीं आया, वेदांत जानता है, योगी लोग जानते हैं। रामानंद स्वामी ने जोर से शंख फूंका, वो अघोरानंद जी महाराज की समाधि लगे, जो ब्रह्म में पहुंचने की थोड़ी कमी थी क्या, वो संत की दृष्टि पड़ी। और संत तो उत्तम जापक थे, उत्तम एक महापुरुष उत्तम जापक हो तो उसके साथ लाख आदमी बैठे, उसकी नजर पड़े संत की और वाणी सुने, वो लाख आदमी को लाभ उतना ही होगा, अच्छे से को तो लाभ होगा, लेकिन जो नास्तिक है उसको भी दृष्टि का और भगवान के नाम का संत के मुख से निकले हुए भगवान के नाम का लाभ होगा, तो शंख की ध्वनि का भी तो लाभ हुआ क्या? अगर आनंद महाराज तो वैसे ही ऊंचे थे, वो तो समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए और उनको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। जैसे घड़ा फूटे तो महाकाश में मिल जाए, ऐसे जीव आत्मा ब्रह्मात्मा में व्यापक चैतन्य में मिल और शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो रामानंद स्वामी ने अपने शिष्यों को कहा कि इनकी 10 नामी उचित अंत्येष्टि करो, खूब विधि विधान से, जैसे साधु की आखिरी विधि होती है शिकार विधि किया। अब वो चित्रांगना बोलती है कि ये छोरा के काय करूं मैं, कि तारो जाए हो तू संभाल, हमारे देह काटे भागी रहती तू, तारो जाए तू संभाल के। देवांगना उस तेजस्वी बालक को लेकर काशी के एक शांत सन्नाटे सरोवर में, जहां कमल के पत्ते बिछे थे और कमल के फूल कहीं खिले थे, वो अपने अप्सराई विद्या के बल से बालक को कमल के पत्ते पर रख दिया। बड़े बड़े जो पत्तल जैसे पत्ते होते हैं क्या, और खुद वहां सूक्ष्म होकर बालक की रखवाली करने लगी। एक सुबह नीरू नाम का जुल्हा और उसकी पत्नी नीमा दोनों सैर करने गए, घूमने गए सुबह से, और दोनों ने वर्षों की शादी की थी, बालक नहीं हो रहा था, और सरोवर के पानी के बीच और एक पत्ते पर बालक सोया है, ये देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। नीरू देखता है, देख खुदा ने क्या रहमत कर दी। नीमा कहती है कि अजगर भी रहमत है, खुदा ने हमारे लिए इस बालक को यहाँ प्रकट किया, किसी इंसान का जाया हुआ नहीं, अगर इंसान का जाया होता तो यहाँ पत्ते पर तो नहीं होता। अगर किसी विधवा बाई ने बालक को जन्म देकर अपने को उसको छोड़ा होता तो सड़क पे छोड़ के भागती, बीज पत्तों पर नहीं रख सकती थी। दोनों पति पत्नी सहमत हुए और उस बालक को ले आएंगे, अपने गोद का बेटा मान के उसका पालन पोषण करेंगे। जो इन नीरू जुल्हा ने बालक को उठाया तो बालक का तेज, बालक का प्रभाव तिरोधाहित हो गया, सामान्य बालक जैसा दिखने लगा। वो जो तेजस्विता थी उसके छूने से, नीरू के छूने से बाधित हो गई। फिर भी बालक तो था, तो वैसे दिव्य आत्मा तो था, ले आए घर। नीरू भागा मुल्ला जी के पास कि ऐसा ऐसा हमको बालक का जन्म घर में तो नहीं हुआ, लेकिन तालाब के उस पत्तों पर पड़ा बालक हम ले आए। मुल्ला जरा समझदार था, बोले जरूर किसी परी का जाया होगा, किसी औरत का जाया होता तो तालाब पे नहीं होता, जरूर किसी परी का जाया होगा, तुम जल्दी ला में उसका दीदार करो। उस बालक के दीदार करते ही मुल्ला के दिल में चार चांद चमके, बड़ा उसको आनंद आने लगा, क्योंकि प्रहलाद का आत्मा अगले जन्म का उत्तम जापक था। जयराम जी बोलना पड़ेगा क्या? मुल्ला ने उसके दीदार करते ही मुल्ला का मन इतना तो खुश हुआ कि उसकी ठोड़ी पकड़ के बच्चे की, तू बता किसका औरस है और किसका जाया है, किसका तू ओज है और किसका जाया है। वो मासूम बालक बोल पड़ा कि स्वामी अघोरानंद का तो औरस हूं और अप्सरा का जाया हूं। उसने फारसी भाषा में नाम का जोड़ मेल मिलाते मिलाते उस बालक का नाम कबीर रख दिया, जयराम जी की, और कबीर रख दिया। नीमा और नीरू तो बड़े खुश हुए, लेकिन नीमा को तो अपने शरीर में दूध तो था नहीं। एक ब्राह्मणी का छोरी मर गई थी, मैना हुआ था, ब्राह्मणी ने कहा मैं इसको दूध पिलाऊं। नीरू गरीब था, एक बनिया को वहां गाय भी आई, उसने बोला तुम्हारे यहाँ बालक भगवान ने दे दिया है, तो गाय को बछड़ा भी भगवान ने दे दिया, अब गाय में तुम्हारे घर बांध जाता हूं। तो उस बालक के लिए गाय का दूध लिया, दूध पिए नहीं, वो ब्राह्मणी अपने छाती का दूध पिलावे, बालक दूध पिए नहीं। नीरू जुल्ला घबराया कि बालक जब खाएगा पिएगा नहीं तो फिर कैसे जिएगा। वो फिर गया रामानंद स्वामी के पास, सुना था रामानंद महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं। रामानंद स्वामी ने एक बूटी दे दी, बूटी की जड़ का टुकड़ा होता है ना डांडी, बोले लो ये दे देना, वो अपने आप ले लेगा। तो जो बूटी की जड़ दे दी, वो बालक चूसने लग गया, तब से उस बूटी का नाम कबीर बूटी पड़ गया, भूख लगाने वाली। अब तो महाराज क्या हुआ कि वो ब्राह्मणी का भी दूध पीने लगा, गाय का भी दूध पीने लगा, ऐसे करते करते कुछ बड़ा हुआ छोकरा। रामानंद स्वामी जानते थे कि छोकरे के रूप में कौन है उत्तम आत्मा। रहीदास को और कबीर को बुलाया, जब वो बालक छोटे थे किशोर अवस्था में होंगे, 8-10 साल के होंगे, बुलाया, अपनी एक थोड़ी नजर डाली और राम 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 राम, राम। वही बालक आगे चल के दोनों महान संत हुए। रहीदास ने मीरा को दीक्षा दी और मीरा ने पूरा मेवाड़ झुमा दिया गया, अकबर जैसे को भी मीरा ने झुमा दिया, और कबीर ने भी हजारों लाखों लोगों को झुमाया, और अभी भी कबीर की वाणी हम लोग सुनते मानते जानते। तो जो उत्तम जापक होता है उसका बड़ा प्रभाव होता है। उत्तम जापक महापुरुष के बीच वो एक है महापुरुष, चाहे वो श्रोताओं के बीच भी हो सकता है, लेकिन एक उत्तम जापक उसके साथ बैठ के हरि कथा सुने और हरि कथा का भगवान नाम ले, तो लाख आदमी हो तो लाख आदमी का मन उस समय तो भक्ति भाव से और सात्विकता से रंग जाएगा। इसलिए बोलते सत्संगी बड़ी भारी महिमा।
येषां त्वंतगतं पापं, येषां त्वंतगतं पापं। येषां त्वन्तगतं पापं
येषां त्वन्तगतं पापं
जनानां पुण्यकर्मणां
जनानां पुण्यकर्मणां
ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता
ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता
भजन्ते माम दृढव्रताः
भजन्ते माम दृढव्रताः
भजन्ते माम दृढव्रताः
भजन्ते माम दृढव्रताः
जिन पुण्य कर्मों के पाप नष्ट हो गए हैं, पापी की पहचान है कि उसको सत्संग में आने की इच्छा नहीं, पापी की पहचान है कि सत्कर्म करने की रुचि नहीं होगी, शुभ कर्म में उसको आलस्य आएगा, अशुभ कर्म खूब करेगा उत्साह से, शराब कबाब बफे पार्टी चिकन पार्टी हो आई एम रेडी, और हरि कीर्तन की पार्टी में तो भागशाली लोग आ सकते हैं, पापी आदमी नहीं आ सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। ज्वर मना बुखार, जोरदार बुखार है, माँ ने बड़ी व्यंजन बना के दिए थाली सामने, उन्हें खा भावे कोई नहीं, आज दिन तक तो चाहते थो भावे कोई नहीं, बुखार है। ऐसे जिसको सत्संग भावे कोई नहीं, उसको पाप का बुखार चढ़ा है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। एक मुल्ला था और दूसरा था पंडित, दोनों की थी दोस्ती। मुल्ला ने कहा, पंडित तुम तो मेरे जिगरी दोस्त हो यार, करीम की माँ जो है ना मुर्गी को बहुत बढ़िया बनाती चिकन, बताओ पंडित जी मेरे घर कब आओगे और चिकन कब खाओगे? मुर्गी मेरी औरत मुर्गी खूब बढ़िया पकाती। मुल्ला कहता है पंडित को, लेकिन पंडित भी कच्चा नहीं था, पक्का पंडित था, हाँ वो दोनों की दोस्ती थी और पंडित अकल वाला भी था। मुल्ला ने कहा बताओ जल्दी कब, मैं तुमको दावत दे रहा हूं और मैं दोस्त की दावत ठुकराना मत, बोलो कब खाते हो मुर्गी, मेरे घर कब आते हो और मुर्गी कब खाते हो? पंडित ने कहा तेरे घर भी आऊंगा मुर्गी भी खाऊंगा, लेकिन जिस दिन तेरे बेटे करीम की जनोई होगी उसी दिन आऊंगा। अब करीम की जनोई क्या होगी? बेटा करीम जनोई कैसे पहनेगा, हिंदू तो है नहीं। पंडित भी उस्ताद निकला के बोले मैं आऊंगा जरूर, तेरी दावत स्वीकार है, लेकिन उसी दिन आऊंगा जिस दिन तेरे बेटे करीम को जनेऊ देंगे। हाँ मुसलमान जनेऊ लेगा तो मिलेंगे नहीं उसको जनेऊ के। तो कभी कभी पुण्य कर्मा लोग जो है वो जैसे चकोर को चांद के बिना अथवा पपीहा को पीहू के बिना मछली को जल के बिना अच्छा नहीं लगता, ऐसे पुण्य कर्मा लोगों को सत्संग के बिना अच्छा नहीं लगता, और पापी आदमी के को बुरा काम के बिना अच्छा नहीं लगता। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम के गुरु जी कहते हैं कि राम जी मैं जब बाजार से निकलता हूं तो मेरे लिए लोग क्या क्या अफवाह उड़ाते मेरे को सब पता है। लो राम राज्य दशरथ जिसके चरणों में बैठे, राम जी जिसके पैर धोके चरणामृत लेते, ऐसे वशिष्ठ के लिए भी बोलने वाले बकने वाले बकते, तो तुम्हारे हमारे लिए किसी ने बोल दिया तो चिंता काहे करो, फिकर काहे करो यार। जिनका स्वभाव है वो तो चांद में भी काली माँ देखेंगे, लेकिन जिनका स्वभाव है वो तो कुत्ते में भी मधुरता का दीदार कर लेंगे। नामदेव ने कुत्ते में भगवान की भावना की। नामदेव यात्रा करने जा रहे थे, अपने अपने तंबू लगा के टिकड़ पका रहे थे, अपना रोटी बना के वो अंदर घी की कटोरी लेने गया तंबू में, वो काला कुत्ता आया और उसने उठाई रोटी, और नामदेव घी की कटोरी तो लाया और देखा कि रोटी कहाँ गई, वो लिए जा रहा है। नामदेव ने देखा कि काला कुत्ता यात्रा में शुभ माना जाता है, लेकिन वो सब इतने सारे लोग हैं उनकी नहीं लिया मेरे लिए, तो काला कुत्ता के रूप में मेरे ठाकुर जी होंगे, नामदेव की भावना है। नामदेव कटोरी लेके दौड़ा पीछे, उबारे उबारे अन्नदाता उबारो, रुकी रुकी नहीं खाओ, जरा घी लगाड़े दे, उबारे हो उबारे हो, अरे उबारे हो, ओ प्रभु उबारे हो उबारे हो, ओ नामदेव भागे जाए, कुत्तो जोर से भागे जाए, मणेल रोटी खाओ मुरारी घी मखे दिए गिरधारी घी मखी नालू घी लगाड़े नालू, उबारे हो के उबारे हो जाए नाठो कुत्रो। नामदेव गबड़ाया, था क्या के नाथ रुखी तो नहीं खावा दे, મારા થી દોડા તો નિયે તો કઈ વહી ગયો, અટે જુબા રહ્યો નામદેવ હટ લેન બેઠા ને અટે જુબા રહ્યો. કુત્તા કે અંદર ને જો ચેતના હૈ ઉસને પ્રેરણા કે રોટી તો નીચે રખી ઓર મુંહ ખોલા તો અંદર સે માં કે બિહારી લાલ કી છે. જીસકી દ્રઢ ભાવના હૈ વો તો કુત્તે મેં ભી ભગવત ભાવ કર લેતા, ઓર જીસકી નીચ ભાવના હૈ વો તો વશિષ્ઠ મેં ઓર સંત મેં ઓર મીરા મેં ભી દોષ દેખતા હૈ. વિક્રમ રાણા મીરા મેં દોષ દેખતે થે, ઉદા ને મીરા કો બદનામ કિયા થા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે લિયે ભી કિતને કુપ્રચાર ચલતે થે, નામદેવ કો જેલ મેં ડાલ દિયા થા, સંત તુલસીદાસ કો જેલ મેં ડાલ દિયા થા. પાપી તો અપના પાપ કા કામ કરતા, ધર્માત્મા ધર્મ કા કામ કરતે, સત્સંગી સત્સંગ કા સહારા લેકે અપના બેડા પાર કર લેતા હૈ. ક્યા એક દિન નામદેવ જા રહે થે, અંધેરી રાત થી ઓર એકાએક બડા લંબા ચોડા ભૂત દિખાઈ દિયા. નામદેવ કે મન મેં તો સબ ભગવાન હૈ તો ભૂત કાય દેખે. નામદેવ કે ભલે પધારો લંબકનાથ, ભલે પધારો લંબકનાથ, ધરતી પે ચરણ આકાશ લો માથ, યોજન ભર કે લંબે હાથ, ભલે પધારો લંબકનાથ, ભલે પધારો લંબકનાથ. દાસ નામદેવ કી બિનતી સ્વીકારો, અબ કો કર્યો બેડો પાર, ભલે પધારો લંબકનાથ, ભલે પધારો લંબકનાથ. લંબકનાથ મેં ભી નામદેવ કી ભગવત બુદ્ધિ હોઈ, ભગવાન ને દેખા કે તો ભૂતડે મેં મેરે કો દેખ રહા હૈ, અબ તો મેરે કો વહાં પ્રગટ હોના પડેગા, ઓર વહાં પ્રગટ હો ગયે તો ભૂતડે કી ભી સદગતિ હોઈ, ઓર નામદેવ કો ભગવાન કા દીદાર હો ગયા યાર. દેવતાઓ કે બીચ એક ચર્ચા ચાલ રહી થી કે સંસાર મેં સબસે જ્યાદા સુખી ઓર સબસે જ્યાદા પ્રસન્ન ઓર ગંદે સે ગંદા બુરે સે બુરા વસ્તુ મેં સે બુરે સે બુરે વ્યક્તિ મેં સે ભી અચ્છાઈ ચુનને વાલા ઇસ સમય ધરતી પર કોણ હૈ. ઇન્દ્ર ને કહા સર્વસે ઊંચી દ્રષ્ટિ સદા સુખી રહેને વાલા, ચાહે કૈસા વિઘ્ન બાધા મુસીબત આ જાય, લેકિન અપની સચાઈ પર મધુરતા પર રહે, ઓર બુરે સે બુરે વસ્તુ મેં સે ભી અચ્છાઈ ઢૂંઢ લે, એસા અગર કોઈ વ્યક્તિ દેખના હૈ તો અભી શ્રી કૃષ્ણ કા વ્યક્તિત્વ હૈ. શ્રી કૃષ્ણ બુરે સે બુરા ગંદે સે ગંદા વસ્તુ ગંદે સે ગંદા જીવ હો ઉસમે સે ભી અચ્છાઈ ઢૂંઢ લેંગે. એસા કરકે ઇન્દ્ર ને ખૂબ પ્રશંસા કી. દેવતા કો શંકા હોય કે બુરે મેં બુરા ગંદે મેં ગંદા વસ્તુ વ્યક્તિ જીવ જનાવર મેં સે ભી શ્રી કૃષ્ણ અચ્છાઈ ચૂંઢ લેંગે, યે કૈસે હો સકતા હૈ, બુરે મેં સે અચ્છાઈ કૈસે મિલેગી. અરે કોલસે મેં હીરે મિલતે કોલસે કી ખાણ મેં, તો બુરે મેં સે અચ્છાઈ ક્યો નહીં મળે. દેવતા કો શંકા. દેવતા ને દેખા કે શ્રી કૃષ્ણ ઇસ સમય કુંજ ગલીઓ મેં ગ્વાલ મિત્રો કે સાથ કહી સે પસાર હો રહે. દેવતા ને અપના સત્ય સંકલ્પ કરકે એક એસા રૂપ બનાયા ભયાનક એકદમ ગંદા, એક કુત્તે કા રૂપ લિયા દેવતા ને. કુત્તા ભી કૈસા કે પૂંછ કટી હુઈ, શરીર મેં ઘાવ લગે હુએ, ઓર જ્યાં ઘાવ લગે થે વહા ઘાવ મેં જીવડે ખડબડા રહે. પૂંછ કટી હુઈ શરીર મેં ઘાવ લગે હુએ એસા દેવતા કુત્તે કા રૂપ લેકર પડા હૈ, નાલી કે પાસ મેં ગલી, ઉસકે શરીર પર તો મક્ખિયાં બિન બિના રહી હૈ, કાન ભી થોડા કટા હૈ, પૂંછ કટી હૈ, મુંહ ફટા હૈ, દાંત દિખ રહે, ન જીતા હૈ ન મરતા, ઉસકો દેખકર સુગ આ જાવે. એસા ગંદા કુત્તા. ગ્વાલ ગોપો ને કહા કે કૃષ્ણ કૃષ્ણ દેખો અપને કો તો દૂસરા રાસ્તા નહીં, યહીં સે ગુજરના પડતા, યે કિતના પાપી હૈ, કિતના પાપ કા ફલ ભોગત રહા હૈ, કૃષ્ણ દેખો કિતના ગંદા, કિતની બદબૂ. કૃષ્ણ ને કહા પાગલો, ઉસકે દાંત ચમક રહી હૈ, ઉસકે પુણ્ય કા ફલ નહીં દિખતા તુમકો. જૈસે કથા સુનકર બીચ મેં સે ઉઠ કે ચલા જાતા હૈ તો ઉસકે કથા કા પુણ્ય નષ્ટ હો જાતા હૈ, સત્સંગ કા અનાદર કરને સે કથા કા પુણ્ય ઉસકા નષ્ટ હો જાતા હૈ. એસે હી અભી ભારત કે શાસ્ત્રો કી સચ્ચાઈ કા અનુભવ કરના હૈ તો કર સકતે. ભાદરવા શુદ્ધ ચોથ, ભાદરવા શુદ્ધ ચોથ કા ચાંદ દેખ લી. ઘાટવાલા બાબા થે, ઉસને મેરે કો બોલા કે ભાદરવા શુદ્ધ ચોથ કા ચાંદ દેખને સે કલંક લગતા હૈ, યે કૈસી બાત. મે કે મેરે કો તો ભી ખ્યાલ નહીં. બોલે કૃષ્ણ ભગવાન કો લગા થા કે મણિ ચોરાને કા? મે કે હા લગા તો થા. બોલે મેને તો દેખા ભાદરવા શુદ્ધ ચોથ કા ચાંદ. મે ફિર ક્યા હુઆ? બોલે કુછ નહીં. મે કે સાલ ભર મેં કહીં તો કલંક લગા હોગા, क्यों लोग वो ऐसे हरिद्वार की दीवारों पे लिखते थे मेरे नाम का गंदा करना, मेरे को तो कुछ नहीं, वही तो कलंक है क्या। लेकिन जहां ज्ञानी उत्तम जापक अपने को सोहम स्वरूप में जानता है उस महापुरुष को तो कुछ नहीं होता। बाकी व्यवहार में तो निंदा स्तुति अफवाह तो महापुरुष के भी होते हैं, तो तुम्हारे या इसके उसके हो गए तो क्या बात। बुरे में बुरी व्यक्ति, बुरे में बुरी वस्तु, बुरे में बुरी परिस्थिति में भी अच्छा ही ढूंढने वाला आदमी बहुत सुखी रहता। तो श्री कृष्ण कहते ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता। ये भजन करें के न करें, ये भगवान बढ़ा के वो भगवान बढ़ा, ये गुरु बढ़ा के वो गुरु बढ़ा के, ये दिन बढ़ा के वो दिन बढ़ा, अरे भजन जिस दिन भी करते वो सब दिन बढ़े। और गुरु जो भगवान का ज्ञान ध्यान और भगवान से मिलाने वाले सच्चे गुरु हैं, तो उनका एक एक शब्द भलाई के लिए है, बढ़ाई है। द्वंद नहीं रखना चाहिए कि काई करूं, संसार भी चलाना है भजन भी करना है, काई करूं, चलो भजन पूटे करूंगा अभी तो, ए माला धरी के आम तो नहीं। एक आदमी साधु बन गया, जवान लड़का था, लेकिन हृदय का द्वंद नहीं गया, भजन करना ऐसा द्वंद नहीं गया, भजन करूं कि संसार में रहूं, संसार में रहूं कि भजन करूं, हो गया बाबा जी। गिरनार की तलेटी में एक आश्रम था, बाबा जी का चेला हो गया और जरा होशियार था। बाबा जी ने देखा कि मैं मुड्ढा हो रहा हूं, इसी को मैं चादर उड़ा दूंगा, तो महात्मा देख रहे मेरे को, तू भी तैयार हो जा, और चादर इसको उड़ा दूंगा, आश्रम का इसी को महंत बना दूंगा बोले। और धीरे धीरे महात्मा की बात किसी ने जाकर उस लड़के को कहा, वो लड़का ऐसे ही था जरा, ऐसे साधु बन गया था। वो अब माला घुमाने लगा कि हे भगवान, ये हमारा डोकरा गुरुजी कब मरे कि मेरे को गादी मिलेगी, कब मरे कि गादी मिले। ये लोग तो बेचारा ऐसा कभी नहीं सोचते, तो बोले बापू कब आवे इन कथा मिले गए, ए पट्टे तो ये सोचते कि ये बाबा कब आवे इन कथा मिले, और वो सोचता था कि वो बाबा डोकरा कब मरे के गादी मिले, कब मरे के गादी मिले। तो भजन की जगह पे तो बैठा है, साधु तो बना है, लेकिन अभी द्वंद गया नहीं। जयराम जी की। गुरु जी को पता चल गया कि ये कमबख्त चाहता है कि गुरु जी मरे और गादी मरे, अब मैं मरूंगा तब तक इसको वाट देखनी पड़ेगी। चलो गुरु जी एक रात को चुपचाप चले गए। वो जमाने में कोई पगे लगता तो चांदी का रुपया रखता, आज का 70 रुपया होता है ना, सोने की लकड़ी रखता, और इनकम टैक्स ये वो आश्रमों पे उस समय नहीं था, तो आश्रम में खूब पैसा, वो पानी की कोठी होती है कि कोठी भरेला रुपया, कोठी भरेली गिनिया, इतना पैसा। अब वो गुरुजी चले गए, एक दो दिन तो उसने नाटक किया, हाय रे गुरुजी कटे गया रे, गुरुजी मेले में कटे गया रे, भगवान कोई जंगल में कोई शेर खाई गया होगा, का होगा, गुरु महाराज तो गुरु महाराज पहुंच रहा था, अपना कर दिया उसने, जो कुछ टिन्ना फिन्ना करना था कर दिया, उसके चमचों ने उसको गादी पे बिठा दिया, अब तो रोज दूध पाक रबड़ी। जयराम जी की। हाय बराबर माठ चूरमा रे धमा धम मिर्च मसाले वाला खोरा खाए, और उसको सब लोग है बाप जी करे पी आया था, बाप जी गादी पति हुआ के, और खाए पिन आए पटा हो गया क्या। 6 महीना तो हुआ कि संपत्ति जो धर्माद की थी वो धर्म में लगनी चाहिए थी, इसने भोग में लगा दी। वो संपत्ति नहीं विपत्ति हो गई क्या, धर्म के लिए आई थी कि रूखे सूखे को टुकड़ा मिले, लोग सत्संग सुने, ऐसा कुछ बने, उसी लिए आई थी, सत्कर्म के लिए आई थी, और अपने स्वार्थ में खर्चा किया। 6 महीना तक तो कुछ पता नहीं चला, बाद में उसने ज्यादा किया तो एकदम फूटा उसका कर्म, वो हाथ पैर में लकवा मार गया, लकवा मार गया, और रात को नींद नहीं और शरीर में फोड़े हो गए। अरे गुरुजी मैं तो बहुत दुखिया रहूं, ऐसा कभी एक दिन रोया रात को, तो रात को सपने में आया गुरुजी आंखें दिखा रहे। अब गुरु नाराज है तो समझ लो कि अपना कोई रूठा हुआ कर्म है, अपना कर्म अपने को दुख देने वाला है, इसीलिए गुरु नाराज। गुरु नहीं चाहते कि इस बेचारे को दुख मिले, इसीलिए डांटते गुरु। तो सपने में गुरु डांट रहे हैं, गुरु डांट रहे हैं, तो माँ बाप डांटे तो अच्छा, लेकिन जमदूत डांटे तो बुरा है। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साई को त्रास, जब सूरज गर्मी करे तब बरसन की आस। माता पिता और गुरु डांटे तो समझो अपनी गलती निकाल रहे हैं, अपना पाप निकाल रहे हैं, अपने को अपनी गलती महसूस करके सच्चाई पे आ जाना चाहिए। इसको स्वप्न में गुरु जी दिख रहे हैं और डांट रहे हैं, ऐसा दिख रहे हैं। सुबह उठा, अपने चमचो को बोला कि कुछ भी हो कर्म का फल तो मिलता है, मेरे गुरु जी के साथ मैंने खोटा विचार किया और मैं धर्मादि की संपत्ति हड़पने के लिए खोटा विचार किया, मेरे स्वास्थ्य की संपत्ति हड़प, कुछ भी करो मेरे गुरु जी को ढूंढ के लाओ। अब गुरु जी को कहाँ ढूंढ के लाओ, गुरु जी तो चलते चलते पहुंच गए थे काशी, और वो कहाँ, गिरनार सौराष्ट्र में। चमचो ने देखा गुरु जी तो है नहीं। एक दिन की बात है, कोई जमात आई साधुओं की, वो महंत ने कहा साधुओं को कि बाप जी मैं तो मरे गया, मैं तो न संसारी रहा न साधु रहा, मेरे गुरु जी के लिए मैंने खोटा विचार किया, धर्मादे के पैसे का दुरुपयोग किया, अब तो मैं आया हो गया, रात को नींद नहीं आती, दिन को पचता नहीं और शरीर लुला लंगड़ा, अब संपत्ति क्या करूंगा, और ये तो लोडा का चना है बाप जी, अब मेरे को कोई उपाय बताओ। बोले उपाय बताएं तो तेरे गुरुजी जो थे उसको तो हमने काशी में देखा, एक झोपड़ी बना के रहते और भजन करते के हैं, मेरे गुरुजी काशी पहुंच गए के हाँ भजन करते। दो तीन आदमियों को भेजा, बोले जाओ कुछ भी करके गुरुजी को मना कर ले आओ, मैं तो लूला हो गया हूँ, मेरे तरफ से गुरुजी से माफी मांगू, गुरुजी को बुला के आओ। वो गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने कहा बेटा मैं तो आने वाला नहीं, अगर तू मेरे को लाना चाहता है तो ऐसा आंबा बो दे, ऐसा आम का झाड़ लगा दे कि उसकी डालियां को पानी पिला आम के झाड़ को, और डालियां इतनी बड़े वो आम इतना फले फूले कि उसकी चारों तरफ डालियां फैले, और एक डाल काशी पहुंचे और डाल के ऊपर पैर रखते रखते मैं गिरनार पहुंचू। अरे राम राम, आंबा को इतना सींचो तरफ पानी खातर दियो कि चारों तरफ उसकी डाली बड़े और डाली इतनी बड़े कि एक डाल काशी में आए तो एक डाल द्वारका में जाए तो एक डाल हरिद्वार जाए तो एक डाल उधर जाए के रामेश्वर में जाए, चारों तरफ आम की डाल ऐसी ऐसा सींचो खातर पानी कि बस चारों तरफ डाल पहुंच जाए तो एक डाल काशी में जो पहुंचेगी उसके ऊपर पग रख रख के मैं आ जाऊं। देखा कि गुरुजी किसी भी कीमत में आना नहीं चाहते, फूटे हमारा कर्म रे राम, ऐसा आंबा की कब होएगा, ऐसा आंबा तो बो नहीं सकते कि वहां काशी तक डाल पहुंचेगी। मोटी चीजों में जिसकी आसक्ति होती है ना वो सूक्ष्म बात समझ नहीं सकता। फिर कुछ दिन हुए और घूमता घामता कोई फक्कड़ साधु पहुंचे, बोले गुरुजी का पता तो चला लेकिन गुरुजी बोलते आंबा बो दे और ऐसा सींच दे, ऐसा सींच दे कि काशी तक डाल पहुंचे और उसके ऊपर पग रख के आऊं। हाँ तो बोले बो दे, बोले ऐसा आंबा कैसे होगा कि वो काशी तक पहुंचे। बोले पागल समझता नहीं, जैसे केले के पात पात में पात त्यों संतों की बात बात में बात। अब ये जो धन संपत्ति है अपने तो रूखा सूखा खा, चिकना चपाटे से तो ये हो गया, सादा सूदा खा, धर्मादे का पैसे का दुरुपयोग ना हो, और इसका ऐसा सदुपयोग कर, ऐसे संतों को बुला, ऐसा सत्संग कीर्तन और भंडारा भंडारा, गरीब गुरुओं का आंसू पोंछे, ऐसा सत्कर्म कर कि वो तेरे सत्कर्म रूपी आंबा की डाल की सुवास ऐसी जाए चारों तरफ, सुवास रूपी डाल ऐसी जाए, यश रूपी डाल ऐसी पहुंचे कि एक डाल काशी में भी तेरी यश पहुंच जाए गुरु के आश्रम की, और गुरु के आश्रम की यश गुरु सुन के फिर गुरु उसी यश के आधार आधार पे आ जाए। उसने महाराज ऐसा किया, थोड़े दिनों में तो सुवास फैल गई। कर्म तो आदमी का बोले के कोई नहीं बोले, कर्म तो अपना बोले, वेगा मोड़ा अपना कर्म बोले बोले बोले, अपने दिल में तो बोले अने लोगों के मोड़े से भी कर्म तो बोले। गांधी जी की प्रशंसा विरोधी भी किए बिना नहीं रहते थे, कृष्ण की प्रशंसा तो कंस भी करता, कंस की पत्नियां भी करती, भगवान राम ने जिसको तीरों का निशाना बनाया वो रावण मरते मरते कहता है कि हे लक्ष्मण तब तो श्री रामचंद्र जी हैं, भगवान राम हैं, उनको मेरा प्रणाम। और जिनके बाण लगे जिनके कारण लंकेश मर रहा है फिर भी अंत में तो राम जी की प्रशंसा करता है, ऐसे अपना शुभ कर्म होता है शुभ भाव होता है तो पता चलता है। अने बाइयों का वो देराणी जेठानी लड़े न फिर वो भांडा पछाड़े छोरा को कूटे फिर बोले ये कहा करे, मैं तो मुंडाती एक शब्द नहीं बोले, मुंडाती तो नहीं बोली, वासन थी घणो बोले रही है, डोड़ा थी घणो बोले रही है, मुंडाती नहीं बोले तो कई हो गए, कर्म तो बोले आदमी खुश है कि नहीं खुश है, चोखा कर्म करे के गड़बड़ वाला करे, वो तो देखा है अपना दिल में अनुभव है, लोग भी हम दिया गणाए। कीड़ी के पगत नेवर वाजे सो भी साहेब सुनत है। अभी ये मैदान बनाने में जिसने तगारा उठाया होगा वो आदमी होवे के नहीं होवे, ये कर्म करने में जिसने भी सेवा किया होगा वो अभी होवे के नहीं होवे, लेकिन जो भजन हो रहा है 10% तो उसके बाप का हो गया कि नहीं हो गया। कृष्ण कन्हैया तो सत्कर्म करने की जगह बनाना, उसमें भागीदार होना। ये ऐसे दुष्कर्म का फल मिलता तो सत्कर्म का भी फल मिलेगा, उसका यश मिलेगा। धीरे धीरे नींद भी आने लगी और गुरुजी ने सुना कि अब तो आश्रम का ऐसा वातावरण हुआ कि कथा कीर्तन होता है, खूब लोग आते हैं, सत्संग होता है न, गुरुजी की संपत्ति का एक एक पाई का बराबर हिसाब रहता है न, कोई हड़प नहीं करते चमचे वमचे। गुरुजी को संतोष हुआ। जय राम जी की। कि वो नरकों से बचेंगे, उनकी साथ साथ पीढ़ियां बर्बाद होने से बचेगी, चलो अब अपने जाएं। तो गुरुजी फिर आए और गुरुजी के चरणों में वो दंडवत प्रणाम करके बैठ गया कि गुरुजी बोले अच्छा है कि भगवान ने अभी फल दे दिया, तू सावधान हो गया, अगर दूसरे जन्म में देता तो तेरे जैसे दूसरे और पक जाते गे। ये तो कर्म का खोटे कर्म का फल तो है भगवान, 10 साल के बाद 10 जन्म के बाद मत दीजियो, 10 साल के बाद मत दीजियो, 10 दिन के बाद मत दीजियो, अबारे दियो। खोटे कर्म का फल तो अबारे दियो, चोखा कर्म का फल भले नहीं दियो, बड़े बेड़ा होता हो रहे। जयराम जी की। तो ये है द्वंद मोह से रहित आदमी भगवान को दृढ़ता से बचता है। सुशीला कहती है सुदामा को कि अपने घर में खाने को नहीं, तुम भगवान का भजन कर रहे हो, रात को खाने को नहीं, दिन को ओढ़ने को नहीं, मैं एक साड़ी पहनती हूँ, वो बाथरूम में स्नान करके आती हूँ, साड़ी बदलने के लिए एक चित्रा नहीं, वही साड़ी मेरे अंग पे है और वही साड़ी पहन के रसोड़े में जाती हूँ, वही साड़ी पहनकर मैं सोती हूँ, वही साड़ी पहनकर पूजा करती हूँ, वही साड़ी पहनकर स्नान करती हूँ, एक साड़ी है वो भी चित्रा हो गई, कुछ तो करो। बोले काई करा, जो होगा प्रारब्ध में देखा जाएगा, अपने को क्या है, अपने तो भजन करने के लिए अवतार हुआ है। कैसी दृढ़ता है, कैसी भक्ति है। तुम द्वारकाधीश को क्यों नहीं बोलते हो कि अच्छा काई बोलूं मैं, वो सब जाने रहा है भगवान, ना पति देव जाओ, मैं जाओ तो मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ तो ले जाऊं, अब घर में तो खाने को नहीं है और भगवान के पास जाते कि कुछ तो ले जाऊं, कैसे भगत है। द्वंद मोह विनिर्मुक्ता। वो सुशीला पड़ोस में से चावल लाई है, वो पौआ लाई है दाना, एक कपड़े के लीरी में बांध दिए पोटली, और वो डोकरा गया है, शरीर तो अंग तो खुले हैं, खाली धोती काछिया आदि धोती पहनी, चलते 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 द्वारका पहुंचता है और द्वारकाधीश के नौकरों को बोलता कि मेरे को श्री कृष्ण से मिलना, घट ब्राह्मण हड़ पिंजर, पग में तो जूता नहीं, माथे तो टोपी नहीं, दिल पे तो कपड़ा नहीं, एक धोती का टुकड़ा बांध के आया, बगल में क्या है। बोले बगल में श्री कृष्ण के लिए प्रसादी लाया। अरे जा चल। बोले तुम जाके बोल तो दो कि वो द्वारकाधीश को बोल दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। अरे तू मित्र है? हाँ कि मैं मित्र हूँ, हर इंसान भगवान का मित्र है, और मैं तो सचमुच में भगवान का अंदर से तो जीवात्मा परमात्मा का मित्र है, मैं तो बाहर से भी उनका सहपाठी हूँ, मित्र हूँ, तुम जाकर उनको बोलो तो सही। सुदामा जाता है कि वो एक गांडा आदमी आया, डोकरा, पहनने को कुछ है नहीं और खाने को कुछ नहीं, हाथ में लकड़ी है, बगल में पोटली है, बोलता है श्री कृष्ण मेरे मित्र है, सुदामा मेरा नाम है। कृष्ण धड़ाक से जंप मार भागते भागते सुदामा को गले लगाए, सुदामा को ले गए सिंहासन पर बिठाया, सुदामा के पैर धो रहे हैं जगतपति, पैर धोते धोते सुदामा के पैर में कांटा दिखा, रुक्मणी को बोला जरा ले आना सुई या तो कुछ, वो लाने में देर किया, कृष्ण ने क्या करा, अपने पैर अपने हाथों से वो पैर की चमड़ी को दबा के दांतों से अपने मुंह से कांटा खींच के निकाल दिया। बताओ कृष्ण की कितनी उदारता है, कितना प्रेम है अपने प्यारों के। पैर वैर धुला कर दुशाला पहना है, वस्त्र बातचीत किया, बातचीत करते करते वो बापड़ा वो जो पोटली है वो पोटली छुपावे जगतपति को कहीं मैं दिया पौवा है सूखा। वो कृष्ण देखा कि देने में संकोच कर रहे, अरे भाभी ने मेरे के लिए कुछ भेजा है। बोले भेजा तो दियो कहीं करोगे। और झपटा मार के श्री कृष्ण ने वो पोटली ले और लगे फाकने के, आहा पौवा तो बहुत स्वादिष्ट बड़ा मीठा है क्योंकि इसमें प्रेमा भक्ति है। जो द्वंद मोह से रहित तो होकर भगवान को तुम क्या देते हो इसका महत्व नहीं, लेकिन किस भाव से देते हो इसका बड़ा महत्व है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, पत्र दे दो, पत्ता भी कौन सा, ऐसा नहीं लिखा कि यही पत्ता चाहिए, तुलसी का पत्ता रख दो, बिली का पत्ता रख दो, चाहे पीपल का पत्ता रख दो, नहीं मिल रहा है तो। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, फल भी कौन सा के फलाना फल चाहिए, आम का फल चाहिए, सेव का फल चाहिए, नहीं जो भी रख दो। डांगरू रख दे तू आदिवासी, तो डांगरा टुकड़ो रख दे चाले का। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, पत्र पुष्प फल देकर भगवान को संतुष्ट करके अपना आत्मा का विकास करने की व्यवस्था अपने भारत धर्म में। श्राद्ध के दिनों में श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध करने का पैसा नहीं, घर की व्यवस्था नहीं, आप कहीं जंगल में हैं, तो सूर्य नारायण को एक लोटा पानी देकर हाथ ऊंचा करके बगल दिखा दे के मैं तो हरा, लेकिन तू तो प्रकाश स्वरूप है, हमारा दादा जिस भी स्वर्ग में हो कहीं भी हो उसकी सदगति करना, उसको शांति देना। एक लोटा पानी देने से तुम्हारे संकल्प के बल से उनका मंगल होता है। अगर एक लोटा पानी नहीं दे सको तो कम से कम तुम रणभूमि में है, लोटा हाथ में नहीं है, तो बालू लेकर एक अंजलि और सूर्य को अर्घ दे दो। अपने संकल्प को क्रियावंत करने के लिए वस्तु की जरूरत है, जैसे पावर हाउस की लाइट लाने के लिए बीच में है सोने की लाइन हो, चाहे तांबे की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे एल्यूमिनियम की हो, लाइट तुम्हारे घर आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारे संकल्प को साकार करने के लिए कोई वस्तु चाहिए तो भगवान को पत्र दे दो, पुष्प दे दो, वस्तु दे दो, प्रसाद दे दो, और नहीं तो रेती का बालू का एक अंजलि भर के दे दो, तभी भी तुम्हारा संकल्प पर हित का काम कर लेता है। तो सचमुच में जो देते हैं उनका तो कहना ही क्या। भगवान कहते ये शाम द्वंद गतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। वे द्वंद मोह से रहित होकर मेरा दृढ़ता से भजन कर।
मधुर मधुर नाम पावन पावन नाम दिलों का दुलारा नाम हरि, काली का किनारा नाम हरि, पाप का निवारक नाम से बोलो प्यारा नाम, दिल से बोलो दुलारा नाम,
हरी हरी
आम हरी का किनारा नाम, संतों भाया वो ही नाम
हरि हरि आम,
सबने गाया प्यारा नाम
हरि हरि आम,
दिलों का दुल्हारा नाम
हरि हरि आम,
पावन पावन नाम
हरि आम,
सानम का सहारा नाम
हरि हरि आम,
संतों का प्यारा नाम
हरि हरि आम,
भक्तों का सहारा नाम
हरि हरि आम,
पावन पावन नाम मधुर मधुर नाम, पुण्यों का प्यारा नाम
हरि हरि आम,
बोले प्यारा नाम हरि, नरसी बोले वो ही नाम
हरि हरिया,
गौरा का सहारा नाम
हरि हरिया,
कली का किनारा नाम
हरि हरिया,
पाप का निवारक नाम
हरि,
ओम पुण्य का प्यारा नाम
हरि,
पावन पावन नाम
हरि,
मधुर मधुर नाम
हरि,
मधुर मधुर नाम पावन पावन नाम
हरि।
अभी तो साइंस स्वीकार कर रही है कि एक शंख के आवाज से 2200 घन फीट एरिया शुद्ध बन जाती है शंख ध्वनि मात्र से, तो भगवान की ध्वनि मात्र से पृथ्वी पवित्र हो जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए, इसमें क्या बड़ी बात है। मधुर मधुर नाम पावन पावन नाम, प्यारा नाम गौरंग बोले वही नाम ओम, नरसी बोले प्यारा नाम ओम, भक्तों का सहारा नाम ओम, पाप का निवारक नाम ओम, पुण्यों का प्यारा नाम ओम, कली का किनारा नाम ओम, पावन पावन नाम मधुर मधुर नाम, मीरा का सहारा नाम पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम, तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, तुम्हारा दिल मधुर हो रहा है, मीरा भाई प्रेम दीवानी, इंद्रु बांध मीरा मेवाड़ में नाची, गौरांग बंगाल में नाचे, तुकाराम महाराष्ट्र में नाचे, नरसी मेहता सौराष्ट्र में नाचे, तो तुम मध्य प्रदेश के इस सिंहस्थ में शिप्रा तट पर ही दिलबर को दुलहार कर लो। हरि हरि बोल। मंगल समाचार, शुभ घड़ियां, शक्ति पवित्रता। पट ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, आत्मबल
आध्यात्मिक बल पावर। तुम्हारी रग रग में, तुम्हारे रक्त के कण कण में प्रभु नाम का संचार हो जाने दो, ताकि विषय विकारों पर विजय पाने की शक्ति तुम्हारी विकसित हो जाए। धन्य है मेवाड़ की धरती जहाँ मीरा के साथ उनके भक्त नाचे होंगे, और अकबर भी वहाँ मीरा की महफिल में पहुँचा था। धन्य है बंगाल की धरती जहाँ गौरांग के साथ उनके भक्त झूमे होंगे। धन्य है महाराष्ट्र की वो धरती जहाँ तुकाराम के साथ उनके भक्त झूमे होंगे, और धन्य है सौराष्ट्र की धरती जहाँ नरसिंह के साथ उनके प्यारे गुनगुनाए होंगे। ओ मरियो मरियो।
हरि हरि ओ गहरी गहरी शांति।